कारखाना। कारखाने की मशीनें अब धीमी हो चुकी थीं। दिन की आवाजें थककर शांत पड़ी थीं, पर एक कोना ऐसा था जहां दो लोगों की मौजूदगी अभी भी शाम को खत्म होने नहीं दे रही थी, विश्वनाथ और विशाल। विशाल अपने कपड़ों की बाजू ऊपर किए एक मशीन के अंदरूनी हिस्से को देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, उत्सुकता से, निकटता से और जरा सी घबराहट से। विश्वनाथ उसके पास खड़ा था, गंभीर, शांत, पर उसे ध्यान से देखते हुए। देखो, विश्वनाथ ने बोला, उसकी आवाज मशीनों से भी ज्यादा भारी। ये हिस्सा बार बार रगड़ खा रहा है, इसलिए मटेरियल की क्वालिटी गिरती है, डिजाइन डिस्टर्ब हो जाता है। विशाल ने तुरंत सिर हिलाया, हाँ मामा जी, पर अगर हम इसका एंगल थोड़ा बदल दें तो दबाव कम हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें तो पूरा प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। विश्वनाथ के चेहरे पर पहली बार हल्का सा आश्चर्य उभरा। तुमने पहले कभी ये मशीन देखी है? उसने पूछा। विशाल हंस पड़ा, नहीं मामा जी, पर चीजें समझने की आदत है। विश्वनाथ कुछ सेकंड चुप रहा, उसे विशाल के जवाब में एक ईमानदारी दिखी और शायद उसे यही पसंद आया। वो धीरे से बोला, ठीक है, फिर तुम बताओ कैसे करना चाहिए। विशाल का चेहरा खिल गया, उसने एक कपड़ा उठाया, मशीन के एक एक हिस्से को साफ करते हुए ध्यान से समझाने लगा। ये हिस्सा हर बार ओवरलोड लेता है, अगर इसे थोड़ा रीपोजिशन किया जाए और रोटर का एंगल बदला जाए तो ये ज्यादा देर टिक सकता है। विश्वनाथ ध्यान से सुनता रहा, उसकी आंखों में पहली बार न सिर्फ दिलचस्पी बल्कि गर्व की चमक थी। बहुत लोग आए, उसने सोचा, पर किसी ने इतनी जल्दी चीजें नहीं समझी। विशाल बोलता गया, पूरी लगन से, जैसे उसे सालों से यही मौका चाहिए था। एक पल जो अनदेखा नहीं रहा, विश्वनाथ ने उसे देखते हुए एक बात जरूर नोट की, विशाल के अंदर एक मजबूत आत्मविश्वास था जो कम उम्र के लड़कों में कम होता है। उसके हाथ मशीन पर चलते थे पर दिमाग कहीं आगे भाग रहा था, जैसे वो सिर्फ वही नहीं देख रहा जो सामने है, बल्कि वो भी देख रहा जो आने वाला है। और यही गुण विश्वनाथ को पसंद आता है। वो धीरे से बोला, तुम्हारी माँ ने तुम्हें भेजा था? विशाल ने गर्दन झुकाकर कहा, हाँ, कह रही थी कि आपको शायद मदद की जरूरत पड़े, और मैंने सोचा अगर मैं काम सीखूंगा तो आगे आपके साथ चल सकूंगा। उसके शब्द प्लास्टिक की तरह नहीं थे, बिल्कुल सच्चे। विश्वनाथ ने गहरी सांस ली, उसके मन में अनचाही खामोशी उतर आई। आर्यन, वो अकेला, गुस्सैल, अपनी ही दुनिया में उलझा हुआ लड़का, और विशाल इतना सीधा, इतना मेहनती और हर कदम पर सीखने को तैयार। दोनों की तुलना अपने आप सामने आ गई, एक अनचाहे बोझ की तरह। उन्होंने चुपचाप सिर फेर लिया, जैसे इस खबर को खुद से भी छिपा रहे हों। वापस काम की तरफ। ठीक है, विश्वनाथ ने कहा, तुम्हारी बात समझ में आ रही है, करते हैं ये बदलाव। दोनों मशीन के पास झुके, विश्वनाथ ने स्क्रू खोले, विशाल ने हिस्से उठाए, दोनों ने मिलकर एक एक एंगल चेक किया। शाम की रोशनी अब थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी, मशीन पर लटकती एक ट्यूबलाइट पीली चमक दे रही थी। इस रोशनी में दो पीढ़ियां बिल्कुल अलग थलग होकर बस काम में डूबी थी, और उस सन्नाटे में एक मजबूत रिश्ता बन रहा था। ये हिस्सा पकड़ो, विश्वनाथ ने कहा। विशाल ने तुरंत पकड़ लिया, हाथ थोड़े कांपे पर उसने कसकर संभाला। अब इसको जरा दबाओ, विश्वनाथ ने कहा। उसके हाथ विशाल के हाथों पर आ गए, सही पोजीशन दिखाने के लिए। एक सेकंड के लिए विशाल का चेहरा ऊपर उठा, उसकी आंखों में सम्मान था, कृतज्ञता की और एक बच्चा सा उत्साह भी। मेरा सही गाइडेंस है तो मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, उसने मन में सोचा। विश्वनाथ ने ये नहीं कहा, पर उसके चेहरे पर एक अनकहा गर्व उतर आया था। काम पूरा पर कहानी नहीं। करीब पौन घंटे बाद मशीन फिर से चलाने को तैयार थी। ओके, विशाल ने कहा, अब चेक करते हैं। विश्वनाथ ने मशीन स्टार्ट की, एक भारी आवाज आई, फिर धीरे धीरे सिस्टम स्मूथ होने लगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, विशाल मुस्कुराया, देखा काम हो गया। विश्वनाथ ने सिर हिलाया, धीमे से पर संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ। अच्छा किया, उन्होंने कहा, तुम्हें सही समझ है। बस चार शब्द, लेकिन विशाल के लिए ये किसी मेडल से कम नहीं थे। वो तुरंत सीधा खड़ा हो गया। थैंक यू मामा जी, मैं हर दिन आऊंगा और सीखूंगा। विश्वनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस उसके कंधे पर हल्का हाथ रखा, जैसे कहना चाहते हूँ ठीक है, देखेंगे। पर हवेली में कहीं और एक और कहानी चल रही थी। उसी समय हवेली के एक कमरे में शकुंतला धीरे धीरे टहल रही थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक शांति फैली हुई थी। सब ठीक हो रहा है, उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। विशाल को भेजना सबसे सही कदम था। आर्यन का दिमाग तो दूसरी तरफ भागता रहता है, पर विशाल वो पकड़ बना लेगा, धीरे धीरे, चुपचाप, और एक दिन उसने मुस्कुराते हुए अपने कान की बाली उतारी। एक दिन आर्यन की जगह खुद ले लेगा। कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया और शकुंतला की योजना अपनी जगह पर चुपचाप आगे बढ़ती रही। कारखाने में वापस विशाल अब अपने कपड़े झाड़ रहा था। उसके चेहरे पर चमक थी, काम सीखने की, कुछ नया करने की, कुछ बनने की। वो बोला, मामा जी अब चलें, बहुत देर हो गई है। विश्वनाथ ने टेबल से अपनी घड़ी उठाई, फाइलें बंद की और कारखाने की आखिरी लाइट बंद की। गेट की ओर बढ़ते हुए दोनों के कदमों की आवाज बिल्कुल अलग थी। विशाल की ऊर्जा से भरी, उत्साहित, विश्वनाथ की गंभीर, सोच में डूबी। वो जानते थे आज जो हुआ वो सिर्फ एक मशीन की मरम्मत नहीं थी, ये एक नए रिश्ते की शुरुआत थी जिसमें चालें थीं, योजनाएं थीं, मायूसियां थीं और भावनाएं भी। दोनों कार की तरफ बढ़े। कारखाने की लाइट बंद हुई, गेट लॉक हुआ और कहानी एक और गहरी दिशा में शांत होकर आगे बढ़ने लगी, जहां श्यामली की तस्वीर, आर्यन का गुस्सा, विशाल की मेहनत और शकुंतला के खेल एक अदृश्य धागे से धीरे धीरे जुड़ने लगे थे।